नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोरोना का टीका तो आपने लगवाया ही होगा, अब इसके बारे में एक खबर आई है। टीका बनाने वाली एक कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में मान लिया है कि कुछ दुर्लभ मामलों में उसके टीके का साइड इफेक्ट होता है। इसी कंपनी का टीका भारत में आपको कोविशील्ड के नाम से दिया गया। भारत में 2 अरब से अधिक टीके लगे हैं, इनमें से 1 अरब 70 करोड़ टीका तो केवल कोविशील्ड का था। क्या यह आप सभी के लिए चिंता का विषय है? लेकिन जब तक कोई वैज्ञानिक साक्ष्य ना हो, ठीक से शोध ना आ जाए, आपको हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। बेशक सरकार को तुरंत इस मुद्दे पर जनता को आश्वस्त करना चाहिए कि यह जानने के बाद उसे क्या क्या करना चाहिए। केवल दुर्लभ कहना काफी नहीं, देखना चाहिए कि एक निश्चित संख्या में कितने लोगों को इसका साइड इफेक्ट होता है, जिसके कारण हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो जाता है। हम आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको कोरोना के समय की कुछ पुरानी बातें भी याद दिलाएंगे कि टीका हमेशा फ्री नहीं था, विपक्ष की पहल और दबाव के बाद फ्री किया गया। आप जानते हैं कि भारत में जनवरी 2020 में टीके लगने शुरू हुए। कोविशील्ड का टीका लगवाने के लिए लोग लाइनों में लग जाते थे, खुद से मांग करते थे, लेकिन जब से ब्रिटेन की अदालत से यह खबर आई है, लोग तरह तरह की आशंकाओं में जीने लग गए हैं। इसकी वजह भी है, हाल के दिनों में हार्ट अटैक की घटनाएं और लोगों का टीके के दुष्प्रभाव से उसे जोड़ देना। अब टीके के कारण हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ी हैं या सामान्य ही हैं, इस पर भी मैं टिप्पणी करने से बचूंगा, क्योंकि जिस देश में जनगणना तक नहीं हुई हो, उस देश में इसका डेटा सही होगा, इसकी उम्मीद कम से कम मुझे नहीं है। फिर भी हम इसके बारे में भी इस वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। कोविशील्ड टीके की खोज करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में माना है कि इसका साइड इफेक्ट यह होता है कि कभी कभी खून का थक्का जम जाता है और प्लेटलेट्स कम हो जाता है, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसे आम जुबान में लोग हार्ट अटैक कहते हैं। इसके अलावा ब्रेन हेमरेज का भी खतरा हो जाता है। इस बीमारी का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपीनिया सिंड्रोम या TTS। टीका बनाने के 3 साल के बाद कंपनी ने पहली बार यह कबूल किया है कि उसके टीके से दुर्लभ मामलों में TTS का खतरा हो सकता है। एस्ट्राजेनेका पर कई लोगों ने केस किया कि इनके टीके से गंभीर बीमारी और मौत हो सकती है। 50 से अधिक केस दायर हुए हैं ब्रिटेन में और 100 मिलियन पाउंड के हर्जाने का कंपनी पर दावा किया गया है। अप्रैल 2021 में ब्रिटेन के एक नागरिक जेमी स्कॉट के दिमाग में टीका लगाने के तुरंत बाद खून का थक्का फंस गया और 3 बार उनकी जान जाते जाते बची। जेमी स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका पर केस कर दिया कि इसके टीका से खास तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है। वैसे ब्रिटेन में साइड इफेक्ट की बात टीके के लॉन्च के समय से ही होने लगी थी। उस समय यह सुझाव दिया गया कि 40 से कम उम्र के लोगों को वैकल्पिक टीका दिया जाएगा, क्योंकि ये माना गया कि टीके का खतरा कोविड से भी ज्यादा हो सकता है। कोर्ट में वकीलों ने कहा कि जितनी उम्मीद कर रहे थे, टीका उतना सुरक्षित नहीं निकला। ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी यानी MHRA के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इंग्लैंड में कम से कम 81 मौतें ऐसी रही हैं जो टीके के रिएक्शन से हुई हैं। मरने वालों में प्लेटलेट्स कम होने के अलावा खून के थक्के भी बनने लगे थे। जिन लोगों में इस तरह का रिएक्शन देखा गया, उनमें से हर 5वें व्यक्ति की मौत हो गई, ये आधिकारिक आंकड़े हैं। दिसंबर 2020 में एस्ट्राजेनेका ने अपने टीके का इमरजेंसी लॉन्च किया। उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा था कि यह ब्रिटेन के विज्ञान की जीत है। कई प्रकार के रिसर्च में भी दावा किया गया कि एस्ट्राजेनेका का बनाया टीका सबसे सुरक्षित है। दुनिया भर के रेगुलेटर ने कहा कि टीका लगाने से रिस्क कम होता है, नहीं लगाने पर जान जाने का रिस्क ज्यादा हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे सुरक्षित बताया था। इसके बाद भी कुछ ही महीने के भीतर यानी मार्च 2021 में ही एक नई किस्म की बीमारी की पहचान कर ली गई और इस दुर्लभ बीमारी पर शोध शुरू हो गया। इसका नाम पड़ा वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड थ्रोम्बोसिस यानी VITT। जुलाई 2021 में ही एक वैज्ञानिक शोध पत्र छप चुका था, जिसमें बताया गया कि टीका लेने वालों में 5 से 24 दिनों के भीतर VITT के केस आने लग जाते हैं। ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, जर्मनी में ऐसे कई केस मिले। पीड़ितों के वकीलों ने दावा किया है कि VITT एक प्रकार से TTS का ही रूप है, जिससे खून जम जाता है। इसकी सटीक परिभाषा के लिए किसी चिकित्सक और वैज्ञानिक से सलाह लीजिए। काफी समय से AstraZeneca यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि टीके से ऐसी कोई बीमारी हो सकती है। एक साल बाद इस कंपनी ने माना है कि उसके बनाए टीके के साइड इफेक्ट से हार्ट अटैक हो सकता है। ब्रिटेन के नागरिक जेमी स्कॉट के केस में मई 2023 में कंपनी ने कहा कि हम नहीं मानते कि टीके के कारण जेनेरिक स्तर पर खून के थक्के जमने की स्थिति पैदा होती है। लेकिन फरवरी 2024 में यही कंपनी पलट गई और मान लेती है कि उनके टीके से दुर्लभ मामलों में प्लेटलेट कम हो सकते हैं और खून के थक्के जम सकते हैं। क्यों होता है ऐसा, अभी स्पष्ट नहीं है। कंपनी ने कहा है कि बिना टीके के भी खून जम सकता है, इसलिए हर केस की अलग अलग जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। कंपनी के खिलाफ वकीलों ने कहा है कि इनके टीके में खामियां हैं और इसके प्रभाव को लेकर जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दावे किए गए। AstraZeneca ने इस बात का विरोध किया है। कंपनी तो यह भी कहती है कि उसने अप्रैल 2021 में ही अपने प्रोडक्ट में यह सूचना जोड़ दी थी कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में खून का थक्का जम सकता है। जेमी स्कॉट के केस के जवाब में कंपनी ने यह बात मानी है कि उसके टीके का साइड इफेक्ट है। अगर कंपनी ने यह बात स्वीकार कर ली है कि उसके टीके से बीमारी और मौत हो सकती है, तो उसे करोड़ों का हर्जाना देना होगा। हालांकि कंपनी को सरकार से सुरक्षा प्राप्त है, तो पैसा सरकार देगी, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बात यहां हर्जाने की नहीं है, जिन्होंने टीका लिया है उनकी आशंकाओं की है। उन्हें यह वजह बेवजह डर हो सकता है कि कोविशील्ड का टीका लगाया है तो वे सुरक्षित हैं भी या नहीं, क्या हार्ट अटैक का खतरा उन्हें भी हो सकता है। कोरोना के समय टीके को लेकर दो तरह की धाराएं दुनिया में चल रही थी। जो धारा टीके पर सवाल उठा रही थी, उन्हें कानून से डराया जा रहा था, विज्ञान का विरोधी बताया जा रहा था। इसके लिए एंटी वैक्सर्स, वैक्सीन हेजिटेंसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। टीका विरोधियों में भी कई धाराएं थीं। 2021 में माया गोल्डनबर्ग की एक किताब आई, वैक्सीन हेजिटेंसी, पब्लिक ट्रस्ट एक्सपर्टीज एंड द वॉर ऑन साइंस। गोल्डनबर्ग का कहना है कि लोगों में टीके को लेकर संकोच इसलिए पैदा हुआ क्योंकि वैज्ञानिक अपने तथ्यों को सरल भाषा में आम जनता के सामने नहीं रख पा रहे थे। वे मानकर चल रहे थे कि लोग अपने आप समझ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। कई लोगों को अपने डॉक्टर में तो भरोसा हो सकता है, लेकिन हेल्थ सिस्टम में नहीं। कई टीका विरोधी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार टीके का विरोध करने लगे, कुछ विज्ञान विरोधी मान्यताओं के आधार पर विरोध करने लगे और कुछ वैज्ञानिक आधार पर सवाल कर रहे थे। उनका मानना था कि ठीक से जांच परख के बाद ही टीके को लॉन्च करना चाहिए, ना कि हड़बड़ी में। वे इस बात को लेकर और आश्वस्त होना चाहते थे कि टीके को लॉन्च करने में सभी प्रकार की सावधानियां बरती गई हैं। वैसे भारत में भी वैक्सीन वॉर नाम से एक बेकार सी फिल्म बनी थी। ब्रिटेन और अमेरिका में वैक्सीन की खोज हुई, मगर इन देशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर फिल्म नहीं बनी। भारत में प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने का टाइम भी है, पैसा भी है और मूर्ख दर्शकों की कोई कमी नहीं है। हमने कोविड के दौरान कई कार्यक्रम किए। इस दौरान हमारे कुछ एक्सपर्ट ने टीके का समर्थन करते हुए भी कहा कि जो लोग वैज्ञानिक आधार पर टीके पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें भी सुनने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त हम हर पहलू जान लेने का दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोरोना के समय कई सरकारों ने कई तरह से मजबूर किया टीका लेना है, उन सवालों को नहीं सुना गया। पीछे की तरफ मुड़कर देखिए तो कोरोना तेजी से फैल रहा था। संक्रमण को रोकने का जाना हुआ रास्ता भी यही था कि टीका लगे, टीका आए। तब देश और समाज की जिम्मेदारी बन गई कि टीका लें और दूसरे को कोविड होने से रोकें। जो भी इसका विरोध करता था उस वक्त मजाक उड़ाया जाता था। दुनिया भर में टीके का विरोध अलग अलग कारणों से हुआ, मगर भारत में ज्यादातर विरोध नहीं हुआ। लोगों ने उत्साह और विश्वास के साथ टीके लगाए। लेकिन जब टीकाकरण का दूसरा दौर शुरू होता है, यानी तीसरा डोज लगने लगा, तब वो अभियान ठंडा पड़ गया, कब बंद हो गया पता नहीं चला। उसके बाद जब हार्ट अटैक से मरने की खबरें आने लगी तब टीके की असर की बात लोग करने लग गए और डरने भी लग गए। अक्टूबर 2023 में नवरात्र और गरबे के आयोजनों में होने वाली मौतों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ICMR की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए चेतावनी भरा बयान दे दिया कि जिन लोगों को गंभीर कोविड हुआ था उन्हें कोविड से ठीक होने के बाद कम से कम 1-2 साल कठोर श्रम और जरूरत से ज्यादा कसरत करने से बचना चाहिए ताकि दिल का दौरा पड़ने की घटनाओं से बचा जा सके। इस बयान से आशंका फैल गई कि क्या कोविड के बाद हार्ट अटैक बढ़े हैं, क्या टीका कारण हो सकता है। बाद में जब ICMR की यह रिपोर्ट जारी हुई तो निष्कर्ष यह निकला कि दिल के दौरे से अचानक होने वाली मौतों और कोविड के टीके के बीच कोई संबंध नहीं है। इसका कारण कोविड के बाद अस्पताल में हुए इलाज, पारिवारिक सेहत के इतिहास, धूम्रपान और असामान्य या अत्यधिक कसरत को बताया गया। आपको याद होगा पिछले साल गुजरात में डांडिया करते वक्त कई लोग हार्ट अटैक से मारे गए। NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2022 में दिल के दौरे से होने वाली मौतों में 12% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई। मीडिया में गरबे के दौरान 22 लोगों की मौत होने की खबरें छपी हैं। मरने वालों में ज्यादातर किशोर थे या प्रौढ़ थे। तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जांच कराने की बात कही। जनवरी 2023 की यह रिपोर्ट कई जगहों पर छपी है। कानपुर में एक दिन में 25 लोगों की मौत हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से हो गई। तब इसके पीछे ठंड को कारण बताया गया। कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट छपती है कि एक सप्ताह में कानपुर में 98 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो गई। 44 लोग अस्पताल में मरे, बाकी अस्पताल पहुंचने या इलाज से पहले ही मर गए। इसी के साथ टीके के असर की चर्चा होने लग गई। मुंबई के अखबारों में भी हार्ट अटैक को लेकर रिपोर्टिंग काफी बड़ी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की मालती अय्यर की एक रिपोर्ट है कि मुंबई में 2022 में हर दिन 26 लोग हार्ट अटैक से मरे हैं। यह जानकारी एक RTI कार्यकर्ता ने निकाली थी। मालती अय्यर की एक दूसरी रिपोर्ट में मुंबई के फोर्टिस अस्पताल का आंकड़ा है। यह रिपोर्ट मई महीने में छपी है। आए दिन ट्विटर पर वीडियो साझा किया जाता है। बहुत कम उम्र के नौजवान डांस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक होता है, गिरकर मर जाते हैं। इसी फरवरी में कर्नाटका के क्रिकेट खिलाड़ी के होयसला की मैच के बाद दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनकी उम्र 34 साल थी। आपने खबरों में देखा है कि पिछले कुछ सालों में कई नौजवान हस्तियों की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। गायक के, अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार, विवेक राज कौशल, राजीव कपूर, अमित मिस्त्री कम उम्र में ही दिल के दौरे का शिकार हो गए। हम ये जानते हैं कि हार्ट अटैक के कई कारण होते हैं, लेकिन ट्विटर पर साझा करने वाले टीके का ही प्रमुख रूप से जिक्र करने लगे, जिससे यह आशंका फैली होगी कि टीके का कहीं असर तो नहीं है। अब ब्रिटेन से आई खबर जिसमें टीका बनाने वाली कंपनी ही मान रही है कि साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो जाहिर है लोग फिर से सवाल करने लग जाएंगे। एक मसला मुआवजे का भी है। ब्रिटेन में अगर टीके से कोई बीमारी हो जाए या मौत हो जाए तो ब्रिटेन की सरकार अपनी तरफ से मुआवजा देती है। 1,20,000 pounds यानी भारतीय रुपए में 1.25 crore। इसे भी वहां के लोग कम बताते हैं। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार ब्रिटेन की सरकार ने फरवरी 2024 तक टीके से जुड़े 163 मामलों में मुआवजा दिया। इनमें से 158 केस एस्ट्राजेनेका से जुड़े थे। भारत में तो सुप्रीम कोर्ट ने ही एक मामले में कह दिया अगर टीके से किसी की मौत होगी तो सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। भारत में कितने लोग मारे गए इसी की प्रमाणिक संख्या नहीं है। 2022 में लैंसेट की रिपोर्ट आई कि WHO के आकलन के अनुसार भारत में 47,00,000 से अधिक लोग मरे। ये आंकड़ा सरकार के अनुमान से 10 गुना ज्यादा था। सरकार ने इस पर भी सवाल उठा दिया। उस समय भी कांग्रेस ने मांग की थी कि हर परिवार को 4,00,000 रुपए का मुआवजा मिले। ब्रिटेन में एक नागरिक ने केस कर कंपनी से सच बुलवा लिया, लेकिन भारत जैसे देश में पता तक नहीं चला कितने लोग किस वजह से मरे, वैक्सीन से कितने लोग मरे और कोविड से कितने लोग मरे। भारत में कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट का एस्ट्राजेनेका से करार हुआ, उस समय इस पर भी विवाद था कि सीरम के बनाए टीके को देसी कहा जाए या विदेशी, क्योंकि रिसर्च तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की थी, जो ब्रिटेन की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अब सवाल उठता है कि अगर यही कंपनी ब्रिटेन में मानती है कि खून का थक्का जम जाता है, कुछ दुर्लभ मामलों में हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज हो सकता है, तब फिर भारत में इस कंपनी के रिसर्च पर ट्रायल करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट और भारत की मेडिकल रिसर्च संस्थाओं को भी आगे आकर अपनी बात रखनी चाहिए, बताना चाहिए कि जब कोविशील्ड की खोज करने वाली कंपनी मान रही है तो क्या उनके रिसर्च में अभी तक ये बात सामने आई है, क्या लोगों को चिंता करने की जरूरत है। इस खबर के बाद तो अपनी बात रखनी ही चाहिए। मुमकिन है टीके के लॉन्च के समय जानकारी ना हो, लेकिन अब जब साइड इफेक्ट की कई घटनाएं हो चुकी हैं, कंपनी भी मान रही है, इस पर कोई कदम कंपनियों को उठाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी दावा किया करते थे कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है, तो क्या अब यह नहीं बताया जाना चाहिए कि कंपनी ने साइड इफेक्ट की बात मानी है? ऐसे में टीका लेने वाले भारतीय नागरिकों को क्या करना चाहिए? आखिर एस्ट्राजेनेका ने भी तो अपनी राय बदली। 7 जून 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने रिसर्च के लिए पैसा दिया। यह भी कहा कि हमें विश्वास था कि हम टीका बना लेंगे।
हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे, तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। आप सब भली भांति जानते हैं कि पिछले साल यानी एक साल पहले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत में भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली।
राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि उनकी सरकार ने टीका विकसित करने के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए, लेकिन इससे पहले 9 मई 2021 को मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुकी थी। कोर्ट में उसका बयान आता है कि सीरम और भारत बायोटेक को क्लिनिकल ट्रायल के लिए कुल 46 करोड़ रुपए दिए गए। इसी हलफनामे में केंद्र सरकार कहती है कि इन दोनों कंपनियों को टीके की रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं दिया है, जबकि भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को PPP मॉडल से बनाया गया है। इसमें ICMR और भारत बायोटेक दोनों साझेदार हैं। भाषणों में हजारों करोड़ का जिक्र आ जाता है और हलफनामे में बात 46 करोड़ पर आ जाती है, लेकिन ब्रिटेन में इस तरह के टीके पर 20 साल से रिसर्च चल रहा था। गार्डियन में खबर छपी है कि एस्ट्राजेनेका के टीके की रिसर्च और उसके विकास में लगा 97% पैसा पब्लिक फंड से था, सरकारी था। ऑक्सफोर्ड को मिले 1,000 करोड़ रुपए में से अधिकतर ब्रिटेन के टैक्स भरने वाले नागरिकों ने दिए या संस्थाओं ने। यह पैसा 2 दशकों की इस रिसर्च को मिलता रहा। यूके की सरकार, वेलकम ट्रस्ट और अमरीकी और यूरोप की संस्थाओं ने भी काफी पैसे दिए। कोविशील्ड का इंटेलेक्चुअल पेटेंट एस्ट्राजेनेका के पास है। भारत में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी हाल ही में न्यूज में आई, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चंदा धंधा का डिटेल सार्वजनिक हुआ। उसी समय इलेक्टोरल ट्रस्ट को लेकर भी खबर छपी। पता चला कि 2022-23 में सीरम इंस्टीट्यूट सबसे अधिक चंदा देने वाली दूसरी बड़ी कंपनी थी। कंपनी ने 50 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा दिया। इसके पहले 2021-22 में 45 करोड़ का चंदा दिया। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को टीका बनाने का एकाधिकार दिया था। इलेक्टोरल ट्रस्ट में जो पैसा आया, उसका सबसे बड़ा हिस्सा BJP को दिया गया था। आपको याद होगा जब टीके के उत्पादन की बात चल रही थी तब उस समय प्रधानमंत्री मोदी भी पुणे में सीरम के दफ्तर पहुंच गए और इस तरह से दौरा किया जिससे छवि बनने लग गई कि टीका बनाने का काम उनकी देखरेख या उनकी प्रेरणा से हो रहा है। नरेंद्र मोदी दुनिया के विरले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने टीका के प्रमाण पत्र पर अपना फोटो लगवा दिया, तो ऐसे व्यक्ति से उम्मीद की जानी चाहिए थी कि वे टीका बनाने के प्लांट में जरूर जाएंगे और उसका वीडियो देश भर में दिखाया जाएगा। आपको याद होगा जब जनवरी 2020 में टीके लगने शुरू हुए तब कई चरणों में इसे लगाया गया, पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, फिर सरकारी कर्मचारियों को, फिर 60 से ऊपर के बुजुर्गों को और उसके बाद 45 से ऊपर के लोगों को टीका लगा। धीरे धीरे 18 साल से ऊपर के सभी को टीका दिया जाने लगा। क्या टीका शुरू से मुफ्त में था? शुरू में बिल्कुल नहीं था। दो तरह का सिस्टम अपनाया गया, 60 से अधिक उम्र और 45 से अधिक उम्र के वे लोग जिन्हें कोई बीमारी हो उनके लिए सरकारी अस्पतालों में टीका फ्री था, लेकिन प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थानों में 250 रुपए तक की कीमत पर टीका मिलने लगा। उसी समय अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको, इंग्लैंड, इटली, रूस, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने मुफ्त में टीका लगा रहे थे। तभी सवाल उठने लगा कि हर देश में फ्री में टीका लग रहा है, भारत में पैसे क्यों लग रहे हैं? यह सवाल वही विपक्ष उठा रहा था जिसके बारे में आप कहते हैं कि दिखाई नहीं देता, विपक्ष ने भूमिका नहीं निभाई वगैरह वगैरह। बहुत बाद में टीका फ्री हुआ, यही नहीं टीका लगाने की रफ्तार भी काफी धीमी थी। उस समय टीका खरीदने की जो नीति बनाई गई उसे लेकर सरकार की बहुत आलोचना हुई। मुमकिन है आप भूल चुके होंगे क्योंकि आपके दिमाग में चिप में, जो भी दिमाग का चिप है, मंदिर को ही याद रखने की जगह बची हुई है। इन खबरों को पलटेंगे तो याद आएगा कि जगह जगह पर टीके के साथ मोदी जी का पोस्टर तब नहीं लगा जब टीके का पैसा लगता था। जैसे ही फ्री हुआ प्रचार शुरू हो गया कि मोदी जी फ्री में टीका दे रहे हैं। इन खबरों से पता चलता है कि मई 2021 से प्राइवेट सेक्टर में जब टीका मिलने लगा तो उसकी कीमत कहीं कहीं 2000 रुपए तक पहुंच गई। यही नहीं, सीरम और भारत बायोटेक दोनों कंपनियों ने केंद्र सरकार को 150 रुपए के दाम पर टीका दिया, मगर राज्यों को उससे भी डबल दाम पर। बाद में दाम कम हुआ तब भी 300-400 के दाम पर राज्य सरकारों को टीका दिया जा रहा था। जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को लेकर डांट लगाई कि 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों से टीके के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा मनमाने तरीके से नीति बनाई गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत ऐसे फैसलों के सामने मूक दर्शक बनकर बैठी नहीं रह सकती है। पहले इस ग्रुप में मुफ्त टीका नहीं था, बाद में इस फैसले को पलटा गया, तो अब याद आ गया होगा आपको। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि सभी को टीका मिले, सभी को फ्री में मिले। यह विपक्ष का अभियान था, मोदी सरकार का नहीं। आपको गोदी मीडिया ने नहीं बताया होगा लेकिन कांग्रेस के प्रचार वीडियो में कोरोना के समय को लेकर भी वीडियो है। इसी 5 अप्रैल को कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक पूरी टाइमलाइन बनाई और अपने हैंडल से ट्वीट किया। जयराम लिखते हैं कि भाजपा कोविड 19 के मुफ्त टीकाकरण को एक बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन सच तो यह है कि विपक्ष के दबाव और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मोदी सरकार को ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। आप क्रोनोलॉजी समझिए। आगे जयराम लिखते हैं कि 18 अप्रैल 2021 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उनसे टीका नीति को स्पष्ट करने का अनुरोध किया, जो तब तक बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं थी, और उन्हें टीकाकरण को अधिकतम स्तर पर ले जाने को लेकर काफी अच्छे सुझाव भी दिए। 19 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने उदारीकृत मूल्य निर्धारण तथा त्वरित राष्ट्रीय कोविड 19 टीकाकरण रणनीति की घोषणा की। ऐसा करके 18 से 44 वर्ष के बीच के नागरिकों के टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दे दी गई। निश्चित रूप से यह एक यूनिवर्सल मुफ्त टीकाकरण योजना नहीं थी। 12 मई 2021 को विपक्ष के 12 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मुफ्त यूनिवर्सल सामूहिक टीकाकरण अभियान की मांग की। 31 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित टीकाकरण रणनीति को मनमाना और तर्कहीन करार दिया और मोदी सरकार को 13 जून 2021 तक इसकी समीक्षा करने का आदेश दिया। इसके बाद ही 7 जून 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम की घोषणा की। कोविड 19 महामारी के दौरान जिस तरह का भयंकर कुप्रबंधन देखने को मिला उसे भूलना मुश्किल है। जयराम लिखते हैं कि गंगा में लाशें तैर रही थीं, ऑक्सीजन की भारी कमी थी, टीकाकरण में अफरा तफरी और तरह तरह की खामियां थी। भाजपा के किसी भी लेवल का प्रचार कोरोना के समय के भारत के लोगों के दुख दर्द और तकलीफ को नहीं मिटा पाएगा। तो अब आपको याद आ गया कि जो टीका आपको मुफ्त में मिला वो नहीं मिलता अगर विपक्ष ने लगातार अभियान नहीं चलाया होता, मनमोहन सिंह ने पत्र नहीं लिखा होता, विपक्षी दलों के 12 नेताओं ने मिलकर सरकार को पत्र नहीं लिखा होता। जो भी ये कहता है कि विपक्ष के पास सकारात्मक एजेंडा नहीं है उसे याद दिलाइए, केंद्र सरकार की नीति और टीके को लेकर राजनीति की बात का समय अब चला गया है। लेकिन राजनीति तो यहां तक की गई कि राज्यों पर छोड़ दिया गया कि वे खुद ही विदेशों से टीका आयात कर लें, राज्यों से कहा गया, जबकि यह काम केंद्र को करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उस समय के मंत्रियों के बयान आप निकाल लीजिए, एक तरफ पोस्टर लगा है मुफ्त टीका दिया जा रहा है, दूसरी तरफ जब पेट्रोल के दाम बढ़ने से हाहाकार मचा तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बयान दिया कि पेट्रोल के टैक्स से टीका मिल रहा है, ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका ने मान लिया है कि टीके का साइड इफेक्ट है तो भारत में भी इस पर संवाद होना चाहिए वरना कंफ्यूजन और फैल सकता है। तब वैसी स्थिति में आप किसी नागरिक को दोष नहीं दे सकते, इसलिए सरकार को और कंपनियों को तुरंत पहल करनी चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।